वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
जो कि प्रकृति के तीन गुणों के अधीन इस भौतिक संसार में अपना जीवन यापन कर रहा है और कितने बड़े भ्रम में वो व्यतीत कर रहा है अपना जीवन, जो कि उसे कहीं और व्यतीत करना चाहिए था। कहीं और का अर्थ है आध्यात्मिक संसार। तो न केवल भगवान अर्जुन को अज्ञानी, अविद्वान, इनके से ऊपर उठाना चाहते हैं, परंतु इस श्लोक के द्वारा भगवान और अर्जुन के द्वारा भगवान हम सबको समझाना चाहते हैं, जितने बद्ध जीव संसार में, कि न केवल हम अज्ञान से और अविद्वान से ऊपर उठें, बल्कि कलयुग में विशेष रूप से जो बद्ध जीव विमूढ़ हो चुका है, जिसको भगवान इस श्लोक में विमूढ़ आत्मा बोल रहे हैं, कैसे हम उस विमूढ़ता से बाहर निकले, उस मूर्खता से बाहर निकले। तो जैसे हमने कहा था कि आज इसका भाग दो है, पार्ट टू। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित इस प्रकार, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमारे आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोकों से संबंध, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव, सर्वशः शब्द की व्याख्या, अहंकार के कारण कर्ता होने का भाव और विमूढ़ आत्मा शब्द की व्याख्या। तो पार्ट वन, पिछले बुधवार हमने क्या चर्चा की, एक क्विक रिकैप उसका। पिछले श्लोकों से संबंध हमने समझा, 25वें श्लोक में भगवान अविद्वान की व्याख्या किए, 26वें श्लोक में अज्ञानी की, और आज के श्लोक में विमूढ़ आत्मा की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। तो हमने प्रकृति के तीन गुणों के विषय में समझने की कोशिश की, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिन के विषय में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण बताए गए हैं। सत्वगुण का प्रमुख लक्षण है आत्म संयम, रजोगुण का प्रमुख लक्षण कामुक तथा लोभी होना, तमोगुण का प्रमुख लक्षण क्रोधी होना। और फिर हमने रामायण से उदाहरण लिया कि कैसे एक ही परिवार में तीन भाई प्रतीक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के, तो कैसे एक ही इंसान के अंदर ये तीन गुण पाए जाते हैं। तीन गुणों के बंधन की तुलना श्रील प्रभुपाद के उदाहरण के द्वारा तीन प्रकार की हथकड़ियों से की गई, लोहे की, चांदी की और सोने की। और फिर कैसे कोई नया शरीर प्राप्त करता है, सूत्रधार कैसे तीन गुण होते हैं, ये एक हमने उदाहरण लिया पेंटिंग का। डिजायर्स आर लाइक ब्रश, थ्री मोड्स आर द थ्री बेसिक कलर्स, लिविंग एंटिटी इज अ पेंटर हु पेंट्स द न्यू बॉडी। सो पेंटर कैनॉट पेंट अ न्यू पेंटिंग इफ ही डजंट हैव अ ब्रश, इफ ही डजंट हैव कलर्स। तो हमें नया शरीर प्राप्त होता है हमारी इच्छाओं और तीन प्रकृति के तीन गुणों के कॉम्बिनेशन से। फिर दुर्गा देवी, जो कि मूर्तिमान भौतिक प्रकृति हैं, उनका रोल क्या है, उनका अभिनय क्या है, कि जो भगवान के नियमों का पालन कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और जो भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे उनको दंडित करना, जैसे कि पुलिस करते हैं। फिर हमने उदाहरण लिया था कि कैसे ये जो 84 लाख विभिन्न शरीर हैं, ये सारे 84 लाख शरीर ये विभिन्न वाहनों के समान है। तो उदाहरण ये था कि विभिन्न वाहन, उनका प्रयोजन, प्रयोजन के अनुसार वाहन बनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमारी इच्छा और कर्म के वजह से हमें वाहन दिया जाता है ये शरीर। तो ये प्रश्न अंत में हमने लिया था कि यदि प्रकृति के तीन गुण, मूर्तिमान, प्रकृति, ये सब और मेरे कर्म, ये सब कारण हैं मुझे अलग अलग योनियों में डालने के, तो फिर क्या मेरे पास कोई चयन करने का कोई अवसर दिया जाता है? डू आई हैव एनी चॉइस? तो हमने अंत में उदाहरण लिया था मेन्यू कार्ड। किसी रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको मेन्यू कार्ड सबसे पहले उठाता है वो, और जैसे ही मेन्यू कार्ड उठाता है तो लगता है कि कितना फ्रीडम है उसके अंदर, कि उसके इच्छा के अनुसार वो ऑर्डर कर सकता है। तो बोलते हुए ना कि ऑर्डर प्लेस कीजिए, तो कौन ऑर्डर प्लेस कर सकता है? ऑर्डर वही प्लेस कर सकता है जिसके अंदर कुछ फ्रीडम हो। तो ऑर्डर तो वो प्लेस कर रहा है, लेकिन उस मेनू कार्ड के अंदर से ही, उसके बाहर से नहीं। तो इसलिए जो विमूढ़ आत्मा समझता है कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं प्रकृति में, ये नहीं जानता कि प्रकृति ने तीन गुणों का मेनू कार्ड सबको दे रखा है, इसी में से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो पोलाइटली प्रकृति ने ये कह दिया कि इस मेनू कार्ड के ऑर्डर के अधीन हो तुम, लेकिन जो समझ लेता है कि नहीं मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो वो है विमूढ़ आत्मा। भगवान काफी स्ट्रेट बोल रहे हैं। तो अब पार्ट टू कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट वीक। तो हमने तीन गुणों के विषय में संक्षिप्त रूप में समझा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हम मनुष्य या चाहे कोई भी योनि आप लीजिए, ये तीन गुणों के ही इर्द गिर्द हमारे सारे कार्य होते, या हमारे इर्द गिर्द ये तीन गुण रहते हैं हर समय, जन्म से पहले, मरने के बाद भी और बीच में भी। जो हम सोचते हैं, इच्छा करते हैं, जो पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, दृष्टिकोण, कर्म, हमारी वाणी, ये सारी सारी चीजें ये तीन गुणों के ही अधीन। तो एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। परसेप्शन या दृष्टिकोण अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स। तो उदाहरण है एक जंगल का, जैसे यहां पे आप देख रहे हो एक घना जंगल है, और इस घने जंगल में तीन व्यक्ति प्रवेश करते हैं, और ये तीन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से आप बताइए कि ये कौन से गुण में स्थित है। वेरी सिंपल शॉर्ट टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहला व्यक्ति इस जंगल में जब प्रवेश करता है, तो ऐसे घने जंगल को देखकर उसके मन में इच्छा होती है, क्यों ना मैं यहां पर शुद्ध ऑक्सीजन अंदर लूं, क्यों ना मैं अनुलोम विलोम करूं, प्राणायाम करूं, योग करूं। तुरंत जंगल में प्रवेश करते ही, जंगल के माहौल को देखते ही उसके मन में ये स्वाभाविक इच्छा आती है योग करने की, ध्यान करने की। दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है इसी जंगल में। जैसे ही जंगल की इतने सारी लकड़ियों को देखता है तो उसके मन में विचार आता है, यदि मैं लकड़ी का बिजनेस चालू करता तो कितना पैसा मैं कमा सकता था, कितनी सारी लकड़ियां यहां पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। तीसरा व्यक्ति जंगल में प्रवेश करता है, जैसे ही घने जंगल को देखता है, जंगल के सुकून को देखता है, शांति को देखता है, तो सोचता है ऐसी शांतिमय जगह में क्या नींद आएगी। तो आप अब बताइए कि कौन कौन से गुण में स्थित था। सिंपल है काफी। पहला व्यक्ति सत्वगुण में, दूसरा व्यक्ति रजोगुण में, जंगल वही है, तीसरा व्यक्ति तमोगुण। जंगल वही है परंतु दृष्टिकोण विभिन्न। तो उसी प्रकार से जैसे कि कई बार हमारे मंदिर में कोई प्रवेश करता है, तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो कोई मंदिर को देखकर, मंदिर के अंदर के डेकोर को देखकर, भगवान को देखकर उसके मन में भक्ति करने की इच्छा आती है कि अरे ऐसी जगह पर बैठकर माला की जाए या भगवान का कीर्तन किया जाए। दूसरा प्रवेश करता है, वो देखता है, कहता है, देखता है कि ये मंदिर कितने स्क्वायर फीट का है, इतने स्क्वायर फीट मंदिर में ये जो मार्बल इन्होंने लगाया है और ये सब जो अंदर डेकोरेशन, कितना पैसा खर्चा किया होगा। तो तुरंत वो कैलकुलेशन शुरू कर देता है, इतने स्क्वायर फीट क्या इसका FSI होगा, वो सब उसके मन में विचार आ रहे। फिर जैसे भगवान को देखता है, ऑल्टर को देखता है, अरे टीकूड का रेट क्या चल रहा है आजकल, मार्बल मकराना जयपुर के, जयपुर मार्बल मकराना का क्या रेट है। तो उसके मन में खाली फिगर्स है, फिगर्स अलग अलग। और फिर तीसरा व्यक्ति वो जब आता है मंदिर में, देखता है कि सब लोग एकदम शांति से सुकून से बैठे हैं माला लेकर, वाह इनकी जो लोरी मुझे सुनाई दे रही है, उस लोरी में ऐसी सुख की नींद। बहुत हैं मंदिर में माला लेते ही उनको ऐसी अलग प्रकार की नींद आती है कि वो पलंग पर भी नहीं आती उनको लेटने के बाद। तो परसेप्शन, दृष्टिकोण तीन गुणों के अधीन। तो भगवान अब इस श्लोक में आगे बोल रहे हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता होने के भाव के कारण जीव विशेष मूर्ख बना हुआ है। यही कारण है बस। मूर्ख बनने का कारण क्या है? कर्ता होने का भाव। आई एम द डूअर, आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे, आई एम द कंट्रोलर, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में। तो उदाहरण दिया गया है कि जब बैल को उसके नाक से बांधा जाता है रस्सी, और जब बैल को यहां वहां खींचा जाता, राधानाथ महाराज का एक प्रवचन हम सुन रहे थे पिछले बुधवार को, तो बैल का एग्जाम्पल दे रहे थे और वो कह रहे थे, व्हेन अ बुल इज टाइड फ्रॉम इट्स नोज, समटाइम्स दिस बुल्स आर ह्यूज। पाश्चात्य देश में आप यदि इन बैलों को देखो तो इतने ऐसे बड़े बड़े भरकम बैल होते हैं, एंड that rope compared to the huge body of the bull is very small, but you pull that rope and the bull moves in the direction of the rope, and the bull thinks आई एम मूविंग, विमूढ़ आत्मा। तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी इसको यहां वहां इस बैल को ले जा रही। तो उसी प्रकार से जो विमूढ़ आत्मा वो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं कर रहा हूं, परंतु रस्सियों को नहीं देख रहा है कि ये सत्वगुण की रस्सी मुझे ले जा रही, ये रजोगुण की रस्सी मुझे यहां ले जा रही, ये तमोगुण की रस्सी मुझे यहां ले जा रही। तो रस्सियों को न देखते हुए जो ये समझे और विश्वास कर ले कि मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ये सब कुछ, तो वो विमूढ़ आत्मा है। हरे कृष्ण। यदि विमूढ़ आत्मा की व्याख्या में इस प्राणी को नहीं दिखाया जाए, चर्चा की जाए, तो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्टुपिडिटी। और किसी को भगवद गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जनरली भी लोग कॉन्वर्सेशन में क्या बोलते हैं, वाई आर यू एक्टिंग लाइक अ डोंकी, और आजकल क्या बोलते हैं, वाई आर यू वर्किंग लाइक एन एस। कितनी बार बोलते हैं, वर्किंग हार्ड लाइक एन एस। कलयुग में खैर दिस विल बी एन इंसल्ट टू एस नाउडेज। क्योंकि अगर उनके समुदाय में जाकर आप पूछो, किनके, गधों के समुदाय में जाकर पूछो, तो वो लोग ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्हाई आर यू वर्किंग हार्ड लाइक अ ह्यूमन। तो वो लोग जब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गाली दे रहे हैं। हमको लग रहा होगा हम गधों के एग्जाम्पल देकर दूसरे को गाली दे रहे हैं। एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो बैसाख नंदन एकदम सुसंस्कृत नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छे वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा मिली है इसको। तो इसको बैसाख नंदन इसलिए बोला गया है कि देखा जाता है कि गधा जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो घास जो है कहीं पर भी किसी जंगल में इत्यादि, घास जो है इक्का दुक्का यहां वहां उगी हुई दिखती है गर्मी के मौसम में, और बरसात के मौसम में सब जगह घास उगी हुई दिखती है। तो गधा क्या सोचता है कि गर्मी के मौसम में जब वो थोड़ा यहां जाता है घास खाने के लिए, तो उतनी सी घास खाता है, फिर देखता है कि 100 मीटर दूर घास थोड़ी सी वहां पर उगी हुई है, बीच में घास नहीं है, तो 100 मीटर दूर चलकर वहां पर घास खाता, और फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है कि मैं 100 मीटर या आधा किलोमीटर चलकर इतनी घास मैंने खा ली, तो उसको लगता है कि मैंने बहुत घास खाई, और वही बारिश में सब जगह पर घास है, तो उसको यहां से वहां जाने में, घास पूरी करने में उसको 1 घंटा लग जाता है, तो उसको लगता है अरे 1 घंटा हो गया, इधर से उधर ही गया, मैं घास ही नहीं। ये गधा, आपको समझ में आया उदाहरण? अब गधों के समुदाय में वो लोग क्या एग्जाम्पल देते हैं, वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य जब दूर दराज जाकर किधर नौकरी करता है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं कुछ अकम्प्लिश कर रहा हूं, और घर बैठे उसको अगर आप मोक्ष का मार्ग दो, तो उसको लगता है क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र से स्वर्ग की प्राप्ति तो छोड़ो वैकुंठ मिलेगा, वो लोग वृंदावन मिलेगा, तो उसको लगता है नहीं, संभव ही नहीं, मैं अथक प्रयास करूंगा, ये होम, ये यज्ञ, ये पुण्य, ये कर्म, ये कर्मकांड। तो जब इतना सब कुछ वो बवंडर करता है तब जाकर उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अध्यात्म में भी किया और मैंने कुछ भौतिक इसमें भी किया। ये क्या, हरे कृष्ण वाले सर मुंडवाकर बैठे खाली माला जप करते, मंदिर में बाहर नहीं जाते कभी, क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब घास यहीं पे, लॉन भारी। तो बैसाख नंदन, ये विमूढ़ आत्मा, इसे एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे महाशय सामने हैं तो याद आ रहा एग्जाम्पल, मैंने अपने आंखों से देखा। करजत स्टेशन, गाड़ी आ रही है और गधा ट्रैक पर खड़ा है, उसी ट्रैक पर जिस ट्रैक पर गाड़ी आ रही है, तो सब लोग पत्थर मार रहे हैं, वो हॉर्न बजा रहा है, वो इंजन ड्राइवर, तो इसको 5 मिनट बाद चमका कि मेरे को शायद हिलना चाहिए। तो फिर हिलना शुरू किया, और हिलना कहां शुरू किया, जिस दिशा में गाड़ी आ रही वहीं भागा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हम लोग हंस रहे होंगे, उस समय मैं भी हंस रहा था, बाकी भी हंस रहे थे करजत स्टेशन पर, लेकिन जितने वहां पर करजत स्टेशन पे खड़े जिस दिशा में जा रहे थे वो भी गधे से कम नहीं थे हम लोग सब, कि काल की गाड़ी जिस जगह से आ रही है, इंद्रिय भोग, धन दौलत, ये सब वो काल की गाड़ी के समान, और उसी दिशा में सब भाग रहे हैं, पैसा, धन दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, संपत्ति, समृद्धि इत्यादि। तो इसलिए भगवान विमूढ़ आत्मा उस व्यक्ति को बोल रहे हैं। तो ये उदाहरण हमने लिया था पिछली बार भी कि ये भौतिक संसार ये क्या है, कठपुतली के खेल के समान है, इट्स लाइक अ पपेट शो। और जब जैसे हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी, हर जन्माष्टमी मैं और गौर गोपाल प्रभु, हमारी एक सेवा थी कि हर जन्माष्टमी पपेट शो ऑर्गेनाइज करना, और पपेट शो में हमारे अलग अलग कुछ स्टोरीज को डिपिक्ट करना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस पपेट शो के लिए लाइन ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर दूर तक होती थी, और बड़े बड़े खड़े रहते थे अंदर आके देखने के लिए पपेट शो। हमको आश्चर्य होता था, हमको पहले लगता था कि खाली बच्चे आएंगे, वो लोग बैठ के देखेंगे, तो कई बार तो बच्चे बाहर खेलते रहते थे, बड़े बड़े बैठ के पपेट शो देखे। और एक के बाद एक शो चल रहा है रात के 12:30-1 बजे तक, बहुत से लोग अभिषेक वगैरह छोड़ के आके पपेट शो देखते थे। तो वो पपेट शो में देखिए लोग जो इतना मुग्ध हो जाते हैं, उनको पता है कि ये असली नहीं है, ये सब पपेट है, कठपुतली है, और कोई चला रहा है, सब पता है, लेकिन फिर भी सामने दिखता क्या है, दिखता यह है कि ये असलियत में ये कठपुतली, जैसे यहां पे आप देखो अभी तो ये बेचारे सब अटेंशन में खड़े हैं, ये हिलने लग जाए तो हम लोग सब अटेंशन में हो जाए, सब अटेंशन में देखेंगे फिर, तो सब पता है, लेकिन फिर भी हम भ्रम में चले जाते, दैट इज इल्यूजन। कि पता है कि कोई चला रहा है, ये लोभ मुझे यहां से वहां भगा रहा है, ये काम मुझे यहां से वहां भगा रहा है, ये अहंकार, ये क्रोध, ये सब कुछ मुझे करा रहा है, लेकिन फिर भी हम जिसको कहते पश्यन अपि न पश्यति, देखे को अनदेखा करना, सीइंग बट नॉट सीइंग, वो हम कर लेते हैं। तो मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक पपेट शो। हरे कृष्णा। आप लोगों को लग रहा होगा डिस्कवरी चैनल है क्या? ये उदाहरण है दो छिपकलियों का। हमने सबने अपने अपने घरों में इन छिपकलियों को देखा, देख रहे होंगे, आगे भी देखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये छिपकलियां जो है, आप चाहे कितने भी घर बदल लो, ये छिपकलियां हर जगह मिलेंगी आपको। सर्वव्यापी भारत में लगते हैं ये। और जैसी छिपकली को हम देखते हैं, मन में कुछ अजीब सा एक अनुभव होता है। तो एक घर में दो छिपकलियां थी इस प्रकार से। तो दोनों छिपकलियां रोज वो सुबह सुबह घर के हर एक दीवार पर भ्रमण करती, कभी लिविंग रूम में, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी बाथरूम में, पूरा सैर सपाटा उनका दिन भर चलता रहता पूरे घर में दोनों। और कभी कभी बीच में मिलती, कैसा रहा बेडरूम का एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कैसा रहा किचन में, कुछ मिला क्या? बोला हाँ आज मिला, एक कीड़ा मिला। कीड़ा तुमको क्या मिला? मेरे को कॉकरोच मिला। अच्छा, तो फीस्ट हो गया तुम्हारा, संडे फीस्ट हो गया। तो ऐसे वो लोग रोज घूमकर उनका साम्राज्य पूरा फैला रखा था। और फिर उनको जैसे ही कोई वो परिवार वाले सदस्य देखते तो सब भाई दूर करो, करते ना झाड़ू लेके दूर करो उसको, और दूर दूर से कैसे करते थे, वो ऊपर नहीं गिर जाए, कहीं नीचे नहीं गिर जाए। कितना डरते देखो ये लोग, हमसे मालिक कौन है घर का, कितना डरते हैं लोग। तो फिर एक बार हुआ ऐसा कि ड्राइंग लिविंग रूम में एक दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई है, दूसरी दीवार पर दूसरी छिपकली चिपकी हुई है। और फिर एक छिपकली दूसरी से कहती है कि बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, हम लोग वेकेशन के लिए नहीं गए, चलो ये घर से बाहर निकलते हैं। तो दूसरी कहती है तुमको पता नहीं हमारे कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? तो दूसरी पूछती है कौन सी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे? अरे हम अगर ये दीवार को छोड़ देंगे तो गिर जाएगी दीवार। तो आपस में उनकी सीरियस ये डिस्कशन चल रहा है। जैसे आप देखो कैसे वो लग रहा है ना, जैसे दीवार को पकड़े हुए ऐसे। तो ये स्टोरी है, एक जेन स्टोरी है एक्चुअली। तो छिपकली सोच रही है कि मेरे ये चार पंजों के वजह से ये दीवार टिकी हुई है, ये छोड़ू तो गिर जाएगी दीवार। तो इसलिए इस पूरे घर और परिवार की भलाई के लिए मैं यहां पर चिपकी हुई। इसको बोलते हैं विमूढ़ आत्मा, अहंकार, मेरे वजह से। हरे कृष्णा। तो अब हमारे आचार्य उन्होंने अहंकार की व्याख्या या विमूढ़ आत्मा की व्याख्या इस प्रकार से की, अहंकार। हाँ, तो छिपकली का उदाहरण उसमें थोड़ा एडिशन में करना चाहूंगा कि हम छिपकली पे हंस रहे हैं कि छिपकली सोच रही है कि मैं जो चार पंजों से दीवार को पकड़ी हुई हूं तो दीवार टिकी हुई है। वैसे ही मनुष्य घर में सोचता है कि मेरे वजह से घर चल रहा है, मेरे वजह से सब टिका हुआ है, मैं और मेरा, कि मैं। इसलिए आप देखो कई बार परिवारों में कलह होता है, कई बार नहीं बहुत बार होता है। तो हस्बैंड उसका उसका भाषण क्या रहता है, उसका लेक्चर क्या रहता है कि घर में रोटी कमाकर कौन ला रहा है, हु इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, पैसे कमाकर कौन ला रहा है, मैं। पत्नी बोलती है लाओ तुम्हारे पैसे प्लेट में सजा के देती हूं, खाओ आज डिनर में, पेट भरेगा तुम्हारा। उस पैसों को रोटी में परिवर्तित कौन करता है, मैं। तो पहले हस्बैंड ने कहा मैं, अब वो पत्नी बोल रही है मैं। तो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे बोलते हैं कि आप लोग दोनों मैं कर रहे हो, यहां पर इस पूरे खानदान का भविष्य कौन है, हम लोग। ये खाली रोटी खाने से कमाने से नहीं होने वाला, ये खानदान को आगे बढ़ाने वाला कौन है, हम लोग हैं। तो मैं, इधर देखो कैमरा इधर लगाओ। सो एवरीवन इज थिंकिंग ही इज द सेंटर ऑफ द फैमिली, द हस्बैंड इज थिंकिंग ही, द वाइफ इज थिंकिंग शी, द चिल्ड्रन आर थिंकिंग दे, और फिर छिपकली सोच रही कि मेरे वजह से दीवार खड़ी हुई है। छिपकली नहीं, और भी बहुत सदस्य होते हैं अंदर। कोई कॉकरोच निकलता है किचन से, कॉकरोच निकलता है और कॉकरोच दूसरे को बोल रहा है कि अरे चूहा कॉकरोच चींटी ये सब, इन सब को लग रहा है कि उन्होंने अपना परमानेंट साम्राज्य वहां पर बसा रखा है किचन के अंदर यहां वहां। सो एवरीवन हु इज थिंकिंग दैट आई एम द मेंटेनर, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ये सभी चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो मनुष्य हो या चूहा हो कॉकरोच हो या जो भी कोई विमूढ़ आत्मा, अगर वो सोच रहा है मैं और मेरा, तो ये है अहंकार और ममकार। तो ये एक सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र से, बहुत अच्छी से इसमें बताया गया है। असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में इति मे कूर्वाणाम काल वृको हंति पुरुष अजम, कि विमूढ़ आत्मा जब वो रोज क्या बोलता है कि ये मेरे वस्त्र, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, तो ये जो मैं करता है, तो वो साउंड जो आ रहा है उसके मुंह से मैं, कौन से प्राणी का साउंड है ये, बकरी का। तो बकरी जो मैं करती है जंगल में, बकरी जितना मैं करती है उतना वो आकर्षित करती है ये जो भी लोमड़ी सियार चीता इनको। अगर वो चुप रहे, बकरी को यदि बचना है तो उसको करना क्या है, चुप रहना है। यदि वो चुप रहे तो ये इनको प्राणियों को समझ में नहीं आएगी कौन सी झाड़ी में बकरी छुपी है। लेकिन जितना वो मैं जितना इतना मैं करती है उतना वो आकर्षित करती है काल रूपी ये जानवरों को, उनको मारने की। तो ये उदाहरण इस श्लोक में बताया गया है कि उसी प्रकार से जब मनुष्य जितना मैं करता, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, मैं हूं करता, मैं हूं ईश्वर, मैं हूं भोग, तो वो काल को और जल्दी बुला रहा है अपने पास, जो कि अगर वो चुप रहे तो हो सकता है कि काल को पता ना लगे कि ये बकरी कहां है। हरे कृष्ण। अब भौतिकतावादी श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन जिसके अंदर उन्होंने व्याख्या की है कि भौतिकतावादी व्यक्ति के दो कैटेगरीज हैं, और कई बार दोनों होते हैं एक के अंदर। कर्ता और भोक्ता। तो कर्ता जो है आई एम द डूअर, ये कौन सा भाव है? ईश्वरी भाव, कंट्रोलर। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? जो कि नियंता हो, कंट्रोलर हो। तो ईश्वरी भाव, जो कि हमने कहा 16वें अध्याय में भगवान ने कहा ईश्वरो हम अहम भोगी, कि मैं करता हूं और मैं भोगने वाला हूं, मैंने ये कमा के लाया है और मैं इसको भोगूंगा। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि फिर से यदि हम लें प्रभुपाद द्वारा जो बताया गया कर्ता और भोक्ता, तो हम देखेंगे कि आज के सिनेरियो में इन दी 21st century इन दिस एज ऑफ कलयुग, कि कैसे हम ये दो भ्रम के अधीन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी हमको कौन सा भाव दे रहे हैं? ईश्वरी भाव। जैसे कि अभी देखो ये मेरे हाथ में ये रिमोट है, ये एक प्रोडक्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी, या मोबाइल होता है हमारे पास में, रिमोट होता है जो। जैसे मैंने दबाया, मेरे मन में क्या भार? वाह, देखा मैंने, देखा कि नहीं, इधर मैंने दबाया, देखा उधर। अब मैं क्या हूं? ये जिसने भी इसका आविष्कार किया है उसने दिमाग लगा के इसके अंदर इतना टेक्नोलॉजी फिट किया। जब कोई गाड़ी चलाता है तो जो भी किसके बेसिस पे वो इतना 120 की स्पीड पे, 200 की स्पीड पे भगा रहा है, क्योंकि उसका जो हॉर्स पावर इतना है, इंजन वगैरह, वो गाड़ी ऐसी बनाई है। लेकिन जब वो ड्राइवर चलाता है तो आपने उसका चेहरा देखा कभी? एक्सप्रेस हाईवे पे 200 की स्पीड पे एकदम एक हाथ से जाए, देखा? देखो देखो, ट्रैफिक पुलिसमैन को भी फूल देके चला जाता है कई बार। तो साइंस और टेक्नोलॉजी हमको कौन सा भाव प्रस्तुत कर कर दे रहा है? कर्ता। यू आर द कंट्रोलर, यू आर द डूअर, ईश्वर भाव। और मीडिया, मीडिया क्या ऑफर कर रहे हैं हमको? यू आर द एंजॉयर। जैसे ही आपने वो रिमोट से टीवी ऑन किया तो पहले तो ईश्वरी भाव आया कि देखो इधर दबाया, देखो मेरी बात मानेगी नहीं उस टीवी ने, मैंने इधर दबाया। और कई बार जब वो टीवी चलता नहीं तो रिमोट को फेंकते हो टीवी के ऊपर, तोड़ देते लोग, क्या कुछ नहीं करते। तो जैसे ही अब उसने रिमोट से टीवी ऑन किया और टीवी में इतने सारे जो कमर्शियल्स और क्या कुछ नहीं आ रहे हैं, तो उसके अंदर फिर अभी उसका एंजॉयरशिप वो चालू हो रहा है। वो लोग दिखा रहे हैं ये आप लो, इससे आप इतने सुखी हो जाओगे, जब तक आपने ये खाया नहीं या ये साबुन नहीं लगाया आपका जीवन व्यर्थ है। आप देखते हो अरे मेरा जीवन व्यर्थ है, मैंने ये साबुन ही लगाया, मैं तो खाली अभी तक हमाम लगा रहा था, ये तो नया साबुन आया। तो फिर साबुन, शैम्पू, खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, सब कुछ वो लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं और फिर वो मीडिया में दिखाते हैं कि कैसे इसने, ये व्यक्ति ने जब ये साबुन लगाया तो देखो कितना सुंदर दिखाइए। तो तुमको अगर इसके जैसा भोक्ता बनना है तो ये साबुन लगाओ। फिर हम भागते हैं साबुन की तरह, साबुन की तरह मेरे को उसके जैसा बनना है, फिर साबुन खरीदते हैं, फिर घिसते हैं, फिर देखते हैं सब, तो हुआ नहीं वैसा। फिर वो बोलता है ऐसे थोड़ी होगा, अभी हमने इसका इंप्रूव्ड वर्जन लाया है, उसको लगाओ। अच्छा इंप्रूव्ड वर्जन, भागता है इंप्रूव्ड वर्जन। जैसे ये टूथपेस्ट, पता नहीं कितने अरसों से हर बार ऐसे टूथपेस्ट निकालते रहते हैं कि जैसे हमको हमारा जीवन का लक्ष्य केवल दांत घिसना है। The only goal of getting this human form of life is to brush your teeth. ये फ्लोराइड, ये जेल, इसके अंदर ये तीन कलर वाले, चार कलर वाले, और टूथपेस्ट तो छोड़ दो, टूथब्रश भी आजकल इतने निकल गए कि यहां तक पहुंच सकता है, यहां तक पहुंच सकता है, उसके अंदर इतने ब्रिसल्स हैं, ये एंगल है, वो एंगल है, उसको टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, अंदर तक घुसा, इधर तक घुसा, सब कुछ साफ करके बाहर निकालो तो लगता है अरे मैं पहले जो नीम के दातुन से करता था, अभी इतने एंगल ब्रश के अंदर आ गए। तो ये सब है भोक्ता, भोक्ता का भाव। तो फिर प्रश्न आता है कि यदि साइंस और टेक्नोलॉजी और मीडिया मेरे को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी मुझे यहां नचा रहा है, वो मीडिया मेरे को यहां भगा रहा है, तो मैं हूं कौन? Who am I? तो अब इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हुए हम आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे। तो ये इंग्लिश में वीडियो है, थोड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा और देखना भी होगा कि जैसे हम बता रहे थे कि एक व्यक्ति तीन गुणों के अधीन कैसे अपनी पहचान बदलता है। जब सत्वगुण में होता है तो उसकी अलग पहचान होती है, आइडेंटिटी। यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु एम आई, व्हाट इज माय आइडेंटिटी। तो सत्वगुण में उसकी अलग आइडेंटिटी, वो अपने आप को मानता है, रजोगुण में अलग, तमोगुण में अलग। जिसको टेक्निकली इंग्लिश में एक वर्ड है, ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग का अर्थ है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर आपको एक चीज बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। इसे प्रभुपाद, ये वीडियो दिखाने से पहले मैं थोड़ा भूमिका स्थापित कर रहा हूं इसकी। जैसे भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर की एक स्टोरी थी, स्टोरी ये थी कि एक राज्य में एक व्यक्ति ऐसे उसकी मजाक उड़ाना चाहते थे राज्य के लोग, नागरिक। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग एक कुछ करेंगे, पूरे दिन भर जो भी उसको देखेगा एक वाक्य बोलेगा। तो इसका नाम था सरगल सिंह। तो सरगल सिंह उठा, नहा धो के अपने घर के बाहर आया, जो भी अपने दुकान खोलने के लिए बाहर निकला। जैसे ही पहले उसके नौकर ने देखा उसको, सबको बताया गया था पूरे राज्य में कि उनको क्या बोलना है, देखा, अरे सरगल सिंह का भूत, सरगल सिंह का भूत। अरे क्या बोल रहा है, सारा पागल हो गया, बोलता मेरा भूत। तो गया, नुक्कड़ कुछ बच्चे खेल रहे थे, सरगल सिंह का भूत, भागो। तो ऐसे करके वो जहां पर भी जाता राज्य में, सभी एक ही लाइन बोल रहे, सरगल सिंह का भूत, सरगल सिंह का भूत। तो शाम तक जितने भी व्यक्तियों से वो देखा, एनकाउंटर हुआ, सभी लोग सरगल सिंह का भूत। तो शाम को सोचने लगा, मैं भूत तू क्या? जो सुबह उसको डाउट नहीं था, शाम को 100 लोगों ने उसको बोला तो उसको डाउट होने लगा। दूसरे दिन वापस से 100 लोग, एक हफ्ते बाद वो कन्विंस हो गया, मैं शायद पता नहीं जिंदा हूं क्या, मर गया, भूत हूं शायद। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो ये वीडियो में यही दिखाया जाएगा कि कैसे किसी एक व्यक्ति को ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे प्रकृति और तीन गुण हमको ब्रेन वॉश कर हमारा आइडेंटिटी चेंज कर रही है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें एक व्यक्ति को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इन्होंने तो इस प्रकार से नहीं बनाया कि तीन गुण, लेकिन तीन अलग अलग पार्टीज आके इसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो आप, हो सकता है कि उसमें कोई सत्वगुण जैसा दिख रहा हो, कोई रजोगुण जैसा दिख रहा हो, कोई तमोगुण जैसा दिख रहा हो। तो आप वीडियो के बाद निष्कर्ष पर आ सकते हैं। स्विच ऑफ द लाइट्स।
Hi.
Hi.
Hi, Bingo.
Excuse me.
हो गया, खत्म हो गया. तो आपने लास्ट में देखा, वो कन्विंस हो गया कि वो बिंगो है. और जैसे ही वो कन्विंस हो गया, तो अगर आपने सुना होगा नेक्स्ट कि नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है जिसको ब्रेन वॉश कर बिंगो बनाना है, वो नेक्स्ट किसने बोला होगा? प्रकृति ने. तीन गुण यहां पर आपने देखे होंगे, द मनी गाय, वो पैसे, रजोगुण का प्रभाव, फिर एक जो खोपड़ी पे हथौड़ा मार के आया वो तमोगुण, फिर एक वो सुंदर सी लड़की सत्वगुण. मेरा इंटरप्रिटेशन है. तो ये इस प्रकार से प्रकृति, आपको समझ में आया वीडियो? इस प्रकार से प्रकृति इन तीन गुणों को लेकर, जैसे कि, और कलयुग में किसको लेकर? साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर और मीडिया को लेकर, कि आप इतने एजुकेटेड हो, आप इतने सुंदर हो, आप ये हो वो हो, और फिर जब ये लोग इस प्रकार से सब ओर से हमको बोलते रहते हैं, तो फिर हम भी खड़े होके बोलते हैं कि हाँ मैं हूं शायद ये सब. और फिर प्रकृति जान जाती है कि ही इज नाउ इनिशिएटेड इन द बिंगो क्लब, हु इज द नेक्स्ट बिंगो. सो दिस मटीरियल एनर्जी इज ब्रेन वॉशिंग ऑल ऑफ अस यूजिंग द थ्री मोड्स टू मेक अस इनटू बिंगो विच वी आर नॉट. And that is what Krishna is saying. Don't become bingo. Don't become vimudatma. अब हमारी जो पहचान है, identity, ये देखिए कैसे बदलती रहती है, निर्भर करती है अलग अलग स्थितियों पर. तो सबसे पहले identity based on species. इसमें उदाहरण है, देवराज इंद्र कौन है? स्वर्ग के जिनको अधिपति बोला जाता है. देवराज इंद्र को एक बार शाप मिला और वो सुअर बने पृथ्वी लोक पर. तो सुअर, अब इंद्र का पद छोड़कर सुअर बने हुए और अब सुअर का जीवन जी रहे हैं कि नालियों में घूम रहे हैं, कहां स्वर्ग के गलियों में और नंदन कानन गार्डन्स में घूमने वाले इंद्र अब प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के नालियों में घूम रहे हैं. फिर उनका विवाह मिसेस सुवर्णी से होता है और फिर छोटे छोटे मास्टर सुअर पप्पी छोटे छोटे वो पैदा होते. तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि अरे इंद्र का सीट खाली कहां है, इंद्र कहां है. पूरा वो स्क्रीनिंग करके देखते हैं कि अरे यहां पे सुअर बना हुआ है. तो ब्रह्मा जी आते हैं नीचे और इंद्र को बोलते हैं कि अरे ये क्या हाल बना रखा है. तो इंद्र बोलते हैं क्या हाल बना रखा है, मतलब क्या? अरे इंद्र हो तुम, इंद्र का पद छोड़कर यहां पर? नहीं नहीं नहीं, बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर मेरा. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोले अरे कितने सुअरों का समाज, इनका मैं इंद्र हूं यहां पर, इनका मैं सरदार हूं, ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकता हूं, इनको कौन संभालेगा? ये नालियों में इतना जो हमारा साम्राज्य फैला हुआ है, गटरों में, नालियों में, अरे भाई अब बहुत कुछ करना है हमको, बढ़ाना है इसको, इसकी वृद्धि करनी है, और भी बहुत सी नालियां खोलनी है, गटर खोलने हैं. पूरा उनके अंदर इंद्र उसके अंदर ही रचे पचे, हिज आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज्ड. He was no more Devraj Indra because of the species. He was identifying himself as a pig. ठीक है, अगर हम मनुष्य लें तो मनुष्य समाज में फिर हम, ठीक है, अपने आप को मनुष्य मानते हैं, कोई अपने आप को पुरुष मान रहा है, कोई स्त्री. देखिए जैसे कोई पैदा होता है,
अभी हमारी लैंग्वेज से हमारा आइडेंटिटी हम बोलना शुरू करते हैं ना, कि मैं गया था, तुरंत क्या समझ में आ रहा है, क्या आइडेंटिटी है इसका, पुरुष है, मैं गई थी, तुरंत फीमेल। तो लैंग्वेज से वो जो कॉन्स्टेंटली नींद में भी अगर वो कुछ बोल रहा है या बोल रही है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि वो पहचान इतनी पक्की हो गई। तो फिर जेंडर के अनुसार हमारा आइडेंटिटी चेंज होता है, फिर एज के अनुसार हमारा आइडेंटिटी चेंज होता है। कि छोटे बच्चे जैसे यहां पे बैठे हुए थे, तो उनको उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पूछे भी तो वो लोग कैसे अपने आप को बताते हैं, मैं तो बच्चा हूं, वही नहीं बोलेगा मैं पापा हूं, पापा नहीं, तुम्हारे पापा है, तू अभी तक पापा नहीं। अब ये अलग बात है कि आजकल बच्चे भी बाप से बड़ा मानते हैं अपने आप को, एक बार एक परिवार में सुबह का सीन, तैयार हो रहे हैं सब लोग, जो पापा हैं वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और जो मम्मी है वो सबको तैयार कर रही है, और ये बच्चा जो है घर का ये स्कूल के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने उस दिन का होमवर्क नहीं किया, लगा हुआ है होमवर्क करने के लिए, परेशान है, होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, और पापा जो हैं वो परेशान है, लेट हो रहे ऑफिस जाने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा है, टाई नहीं मिल रही है, नहीं। तो ये टिपिकल सीन सुबह का। तो जैसे भी ये पापा ऑफिस के लिए निकलना चाहते हैं तो देखा बटन टूटी हुई है, शर्ट की बटन टूटी, तो बोलते हैं अपनी पत्नी को बोलते हैं, यार ये बटन टूटी हुई है, लगाओ इसको पहले। तो नाश्ता वास्ता सब छोड़ के बना रही थी वो, सब छोड़ के आती हो वो, टिपिकल सीन होता ना, बटन सिल रही हो शर्ट पे, और ये बच्चा होमवर्क कर परेशान, तो ये पूछता है पिताजी से, पिताजी मुझको बताओ आदमी शादी क्यों करता है। अभी सोचो इतने टेंशन के माहौल में इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इसको कैसे आंसर करेंगे। तो आंसर करता है, बेटे देखो पुरुष जो है वो शर्ट की बटन टांग नहीं सकता खुद, इसलिए शादी करता है, क्योंकि वही चल रहा होता है ना उधर, मम्मी शर्ट की बटन टांग रही है, बोलता है कि शर्ट की बटन टांग नहीं सकता वो खुद, इसलिए वो शादी करता है। तो बच्चा पूछता है तो फिर दर्जी क्यों शादी करता है, वो तो टांग सकता है ना खुद की बटन, वो क्यों शादी करता है। पिताजी वो टेंशन में आया होता है, सचिन सही क्वेश्चन पूछा है, दर्जी क्यों शादी करता है। तो फिर वो बेटा बोल रहा है कि पिताजी इस समय मेरी घनघोर समस्या ये होमवर्क है और इसके जिम्मेदार आप हो। बोले मैं कैसे जिम्मेदार हूं, बोले आपने शादी की, मैं पैदा हुआ, मेरे को स्कूल भेजा, वो टीचर ने मेरे को ये होमवर्क दिया, और आप बोल रहे हो कि आपने शादी की, आपको शर्ट की बटन टांगने नहीं आती, जिम्मेदार मैं हुआ होमवर्क करने के लिए। ये लो आप करो होमवर्क, क्योंकि शर्ट की बटन टांगनी आपको नहीं आती थी, आपने शादी की थी, ये लो आप होमवर्क करो। वो लेके कंफ्यूज, अभी मैं कौन हूं, हु एम आई। तो कई बार एज के अनुसार हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है एक स्त्री के लिए उसकी आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है, प्रश्न पर उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है। विवाह से पहले जब उस युवती को पूछो किसकी हो, तो विवाह से पहले वो अपनी पहचान क्या बनाती है, क्या बताती है, मैं मेरे पिता की हूं। विवाह के पश्चात उसी स्त्री को पूछो किसकी हो, मेरे पति की हूं। और बूढ़े होने के बाद 50-60 साल के बाद
उस स्त्री को पूछो किसकी हो, तो कहती है मेरे बेटे की हूं, मेरे बच्चों की हूं। तो एज के अनुसार पहचान बदली। फिर आजकल एजुकेशन के अनुसार कोई अगर इंजीनियर बन गया है, एजुकेशन की वजह से डॉक्टर बन गया है, तो उसकी पहचान आप पूछो तो क्या बोलता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो उसकी आइडेंटिटी उसके एजुकेशन पर भी निर्भर करती है और सोशल स्टेटस। कोई कहता है कि मैं विवाहित हूं, कोई बोलता है मैं बैचलर हूं, कोई बोलता है कि मैं इस कंट्री का हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं ये हूं, वो सब सोशल स्टेटस के अनुसार उसकी आइडेंटिटी बदलती रहती। तो प्रश्न ये है कि ये सब कुछ जो बदल रहा है वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये टेम्पररी आइडेंटिटी को परमानेंट मानता है वो है विमूढ़ात्मा। जो बोले कि मैं परमानेंटली डॉक्टर हूं, या मैं परमानेंटली एक पुरुष हूं या स्त्री हूं या जो कुछ, ही इज विमूढ़ात्मा। तो कुछ उदाहरण, कुछ अहंकारी विमूढ़ात्मा के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण दुर्योधन का। दुर्योधन इतना अहंकारी, महाभारत में वर्णन है कि दुर्योधन कभी अपने सर के ऊपर किसी को छतरी लगाने नहीं देता था। अब अगर कहीं धूप में जा रहा है या बारिश हो रही, तो कभी छतरी नहीं लेता था दुर्योधन। क्यों? इतना अहंकारी था, मेरे ऊपर कुछ कोई भी नहीं जा सकता, छतरी भी नहीं जा सकती। अब देखिए, इसको बोलते हैं नंबर वन विमूढ़ात्मा। यहां तक कि जब वो खाना खाता था तो कटोरी से, अब जैसे साधारणतः हम खाना, हमको जब परोसा जाता है तो कटोरी में दाल सब्जी इत्यादि, तो हम उसी कटोरी से बार बार खाते हैं ना। ये एक निवाला लेगा फिर कटोरी बदलना है, मतलब मैं किसी का भी झूठा नहीं खा सकता, खुद का भी नहीं। ये था इसका अहंकार दुर्योधन का। सोचो ऐसे व्यक्ति को खाना कौन खिला सकता है, कैसे खिलाएंगे इसको खाना कि हर निवाले में कटोरी बदल रहा है। तो दुर्योधन विमूढ़ात्मा। बहुत से उदाहरण है ऐसे। हिरण्यकशिपु एक और, जिसने ऐसी तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, उसने सोचा कि मेरा परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को मिल गया है, इंश्योर्ड है मेरा लाइफ, कुछ नहीं होगा। तो मैं और मेरी तपस्या, मेरा इंश्योरेंस, रावण जिसने स्वर्णिम लंका खड़ी की और फिर मैं इस लंका का भोग करूंगा, मेरी इच्छा जिसको भी भोग करने की मैं उसको करूंगा, और रावण उसका प्रतीक, फिर कंस। तो ये सब एक ही क्लब के मेंबर्स, सब अपने अपने टाइम के चेयरमैन थे क्लब के, अपने अपने युग में। कंस भी एक, हमको बचपन में कहानी हमारे मास्टर जी ने सुनाई थी इसके संदर्भ में, आपने भी सुनी होगी, कि एक कछुआ था जो कि एक बहुत बड़े सरोवर में रहा करता था, और इस कछुए को इच्छा हुई कि ये सरोवर को पार कर ये दूसरे देश में ट्रैवल करे। लेकिन अब कछुआ, आप जानते हो कैसे चाल चलता है, तो कछुआ सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर इस सरोवर को पार करके। तो इसने दो बगुलों को पकड़ा और दो बगुलों को आइडिया दिया। इसने आइडिया क्या दिया कि देखो, एक लकड़ी आप अपने चोंच में अटकाओ, दोनों पकड़ो, और बीच से मैं अपने मुंह से वो लकड़ी को दबोच लूंगा, और फिर आप दोनों एंड लकड़ी के उड़ा के मुझे सरोवर के पार कर। तो ये बगुले भी सोचे क्या आइडिया निकाला इसका, क्या दिमाग है इसका, तो भी एग्री हो गए। तब सीन क्या था कि दोनों बगुले लकड़ी के दोनों एंड्स को अपने चोंच में पकड़े हुए, और बीच में ये कछुआ अपने मुंह से वो लकड़ी को पकड़ा हुआ और उड़ रहे। तो जैसे ये सीन को सब लोग देखे नीचे, अभी नीचे सब दिख रहा था ये, तो वाह क्या, तो सब लोग क्या करने लगे, वो बगुलों का गुणगान करने लगे। क्या दिमाग लगाया बगुलों ने, क्या सेवा कर रहे हैं बगुले। और कछुआ सुन रहा था, मेरा आइडिया था ये लोग को गुणगान क्यों कर रहे लोग। तो एक जगह से दूसरे जगह, जितना उसने सुना कि जहां पर भी वो उड़ते हुए जा रहा था सभी बगुलों का गुणगान कर रहे थे। तो फिर उसे रहा नहीं गया, तो उसने जोर से चिल्लाया, अरे मेरा है आइडिया। हुआ क्या, नीचे। तो जैसे ही कोई मुंह खोलता है कि मेरा आइडिया है, मैं, मेरे वजह से हो रहा है, तुरंत वापस से इस भौतिक संसार के समुद्र में गिरता है। यह उदाहरण एक ब्राह्मण का, जो एक गांव में रहता था, और ब्राह्मण जो संध्या वंदन गायत्री का जप करते हैं, तो ये ब्राह्मण इतना प्रसिद्ध उस पूरे गांव में कि पिछले 25 सालों से इस ब्राह्मण ने अपना संध्या वंदन छोड़ा नहीं था। टाइम पर संध्या वंदन, वो टाइम पर होना चाहिए ब्राह्मणों का, वो गायत्री का जो जप करते हैं उनका वो टाइम होता है एग्जैक्ट, वो संध्या के समय उनको वो चैंट करना होता उनका गायत्री। तो इसका रिकॉर्ड था कि इसने पूरे 25 साल में एक बार भी मिस नहीं किया था, टाइम के अनुसार उसने अपना किया था, उसका फेमस था उसके लिए। तो हुआ क्या, 25 साल के बाद एक दिन संध्या के समय जब उसका टाइम आ रहा था गायत्री चैंट करने का, तो उसको नींद लग गई, उसकी आंख लग गई, और वो टाइम बीते जा रहा था। तो तुरंत एक व्यक्ति ने इसको आके उठाया, अरे उठो उठो उठो, तुम्हारा संध्या वंदन का टाइम जा रहा है। तुरंत उसको उठा, होश में आया, उसने आचमन किया, अपने आप को शुद्ध किया, और वो टाइम मुहूर्त जाने से पहले उसने अपना कर लिया संध्या, और वो अरे बच गए, मतलब मेरा रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहा। फिर उसने जानने की कोशिश की कि किसने मुझे उठाया, तो उसने देखा मूर्तिमान कलयुग, मूर्तिमान कलयुग ने उठाया। तो उसको आश्चर्य हुआ कि मूर्तिमान कलयुग तो लोगों को अध्यात्म से पथभ्रष्ट करने के लिए, तो मूर्तिमान कलयुग ने मुझे कैसे उठाया। तो उसने पूछा कि भाई आपने ऐसा कैसे काम किया, आप क्या बदल गए, क्या दल बदल हो गए, क्या हुआ। तो मूर्तिमान कलयुग ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जो करना है, व्हाट आई एम सपोज टू डू आई डिड इट, व्हाट कलयुग आई सपोज टू डू, टेक पीपल अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। बोला कैसे, तो मूर्तिमान कली ने कहा कि देखो 25 साल से तुम जो ये पोजीशन पे हो ना, गायत्री चैंटिंग के, संध्या वंदन करने के, और तुमको जो ख्याति मिली है, उस ख्याति के वजह से तुमको तुम्हारे गायत्री चैंटिंग का 1% भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था, उस अहंकार के वजह से, बिकॉज ऑफ दैट फॉल्स ईगो यू आर नॉट गेटिंग इवन अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट ऑफ चैंटिंग योर संध्या वंदन गायत्री बिकॉज ऑफ योर फॉल्स ईगो। लेकिन मैंने देखा कि आज के दिन तुम्हारा वो मिस हो रहा था, अगर तुम्हारा मिस हो जाता तो लोग तुम्हारी निंदा करते, तुम्हारी खिल्ली उड़ाते, तिरस्कार करते कि अरे इसका भी चला गया, छुड़ गया इसका। तो उस निंदनीय स्थिति में तुम नम्र हो जाते, और यदि तुम नम्र हो जाते तो तुमको फिर तुम्हारे चैंटिंग का क्रेडिट मिल जाता। तो मैंने जो करना था मूर्तिमान कली ने वही किया, आई मेड श्योर दैट यू रिमेन फॉल्सली प्राउड सो दैट योर चैंटिंग ऑफ योर गायत्री शुड नॉट गिव यू एनी क्रेडिट। इसलिए कहा जाता है फॉल्स ईगो मधु के समान है, फॉल्स ईगो इज लाइक हनी। एक श्लोक है, मधु क्लिवम च माधवी के सूदनम मधुसूदनम, बहुत अच्छा श्लोक है, इसके वर्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, कि फॉल्स ईगो अहंकार की तुलना मधु से की गई है। मधु हनी हम लोग सब ने उसका आस्वादन किया है, जैसे ही हम मधु का आस्वादन करते हैं, कितना नाम भी देखो कितना मधुर है, मधु। तो जैसे ही हम मधु का आस्वादन करते हैं, इतना मीठा लगता है, फिर हम और करना चाहते हैं, एक और चम्मच, और चम्मच, फिर पूरी बॉटल उल्टा करना चाहते हैं। तो यह कहा गया है कि जब कोई हमारा गुणगान करता है, कहता है कि अरे साहब आपकी वजह से चल रही है कंपनी, आपकी वजह से घर चल रहा, आपकी वजह से नासिक चल रहा, आपकी वजह से पूरी पृथ्वी घूम रही है, अच्छा वाह, तो वो कैसे लगता है? वो शहद के जैसे लगता है, इतना मीठा लगता है जब लोग हमारा गुणगान करते ना। अच्छा अच्छा और क्या, और बताओ। फिर दोनों कान लगा के सब स्टीरियोफोनिक साउंड में सुनना चाहते हैं उसको, डॉल्बी स्टीरियो में सब, बताओ बताओ और बताओ। तो जैसे ही हमारा कोई गुणगान करता है तो हमको वो शहद के समान लगता है। लेकिन शहद के विषय में कहा है कि आप ज्यादा खा लो, फिर दुनिया घूमती दिखती है। नशा, शहद क्या करता है ज्यादा खाने के बाद? नशा पैदा करता है। इसलिए इस श्लोक में कहा है मधु क्लेवम च माधवी के सूदनम मधुसूदनम। इसलिए ऐसे नशे को नीचे करने के लिए या ऐसे अहंकार को चूर चूर करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं, और वो है मधुसूदनम। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? मधुसूदन। कि जिन्होंने मधु नामक एक राक्षस का भी वध किया, लेकिन इस श्लोक में मधु की तुलना अहंकार से की गई है। तो सूदनम का अर्थ है हनन करना, खत्म करना। तो इस अहंकार को खत्म करने वाले भगवान कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कोई कितना भी बलवान हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा भोक्ता हो, रूपवान हो, धनवान हो, भगवान श्री कृष्ण के सामने आते ही भिखारी दिखाई देता है। चाहे आप कितने भी सुंदर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के सामने खड़ा करो, वो छचुंदर लगेगा भगवान की सुंदरता के सामने। चाहे कितने भी धनवान व्यक्ति को भगवान के सामने लाके खड़ा करो, दो कौड़ी का भिखारी लगेगा भगवान के सामने। कोई कितना भी वो विद्वान हो, भगवान के सामने लाके खड़ा करो, अनपढ़ गंवार लगेगा। इसलिए कहा गया है मधु क्लिवम च माधवी के सूदनम मधुसूदनम। केवल मधुसूदन ही इस अहंकार का हमारा नष्ट कर सकते हैं। तो एक और कथा, एक तपस्वी साधु वन में तपस्या कर रहे हैं और इच्छा यह है कि जैसे ही भगवान अब आएंगे मेरी तपस्या फलीभूत होने के पश्चात, तो उनकी लिस्ट रेडी थी कि मुझे क्या क्या मांगना है भगवान से। तो तपस्या से पहले लिस्ट रेडी कर रखी थी। फिर जब उनकी तपस्या एक साल दो साल बहुत साल करने के बाद भगवान वहां पर प्रकट हुए, तो ऐसी जो लिस्ट जो रेडी थी निकाली उन्होंने, जैसे ही लिस्ट बाहर निकाली तो जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे वो पेड़ मूर्तिमान आ गया। बोले एक मिनट रुक जाओ, इतने साल तुम मेरे पेड़ के छांव में तुमने तपस्या की, तो मेरा कमीशन, भगवान को पेड़ ने कहा मेरा भी कमीशन इसके अंदर इंक्लूड करना, आप जो भी दोगे इसको वरदान। तो वो साधु पेड़ की ओर देख रहा, ऐसे कैसे तपस्या, ऐसे कैसे क्या, तुमको छांव किसने दी, और जो तुम ये पेड़ से मेरे पेड़ से फल खाते थे वो फल किसने दिए? मैंने तो दिए। तो भगवान फिर देख रहे हैं पेड़ की ओर, साधु की ओर देख रहे हैं, बोलो भाई डिसाइड करो क्या। साधु ने कहा ठीक है इसको दे दो, 2% दे दो वरदा। फिर सामने जो नदी बह रही थी वो नदी आ गई, नदी ने बोला एक मिनट भगवान मेरे को भी परसेंटेज चाहिए। तो वो तो तुम्हारा क्या परसेंटेज, रोज मेरे में नहाए, मेरा पानी पिया, ऐसी थोड़ी तुम्हारी तपस्या हुई, मेरे को भी परसेंटेज चाहिए। तो ऐसे कर मूर्तिमान पेड़, वो नदी, सूर्य, पृथ्वी सब आ गए अपना अपना शेयर मांगने के लिए। तो भगवान ने फिर पूछा महात्मा जी तपस्या किसने की, आपने? नहीं, मैं तो इन सब पर निर्भर था। फिर उसे समझ में आया आई वॉज नॉट द तपस्वी, आई वॉज नॉट द कर्ता, इफ आई थिंक आई एम द कर्ता आई एम विमूढ़ आत्मा. तो भगवान आज के श्लोक के द्वारा हमें समझा रहे हैं क्या करना है. वी हैव टू लुक आउटसाइड अवर बॉडी बिकॉज इफ यू कीप लुकिंग एट अवर बॉडी देन वी ऑलवेज विल थिंक दैट दिस बॉडी इज माइन. ये मेरा शरीर, ये मेरे हाथ, ये कर्म मेरे. सो लुकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी. जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये व्यक्ति ट्रेन के बाहर देख रहा है. हम भी ट्रेन में सफर किए हैं. जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और अगर हम ट्रेन के बाहर नहीं देखें तो समझ में नहीं आता ट्रेन की रफ्तार क्या है ना. कई बार आपने अनुभव किया है इगतपुरी स्टेशन सामने वाली ट्रेन हिल रही है, आपको लगता है अरे चली हुई ट्रेन है ना, भ्रम में चले जाते हैं ना. तो यहां पर ये उदाहरण दिया है कि ट्रेन की रफ्तार को यदि जानना है आपको तो खिड़की से बाहर देखना होगा. तो उसी प्रकार से यदि आपको जानना है कि ये प्रकृति और काल की रफ्तार क्या है तो हमको शरीर से बाहर निकलकर देखना है. अगर हम शरीर में ही रचे पचे रहेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये काल और प्रकृति के तीन गुणों की रफ्तार किस प्रकार या कितनी है. एक सुंदर कथा श्री वैष्णव संप्रदाय के अलवर हुए अनंताचार्य जो कि रामानुजाचार्य के शिष्य और तिरुपति बालाजी, जब तिरुपति बालाजी की सेवा प्रारंभ हुई तो जो सबसे पहले सेवक तिरुपति बालाजी के वो बने अनंताचार्य जिनको रामानुजाचार्य ने वहां पे नियुक्त किया. तो ये ऐसी सेवा करते बालाजी के उपवन में उनके लिए हार बनाना, फूल उगाना इत्यादि. तो एक बार अनंताचार्य इनको उस उपवन में एक सांप ने काट लिया, कोबरा ने भुजंग काट लिया और ये अपनी सेवा में लगे हुए, पूरा वो पैर वगैरह सब सूज गया, नीला हो गया शरीर, लेकिन ये अपनी सेवा में लगे. तो भक्तों ने देखा तो तुरंत उनको समझ में आया तो ये वैद्य के पास लेके गए, रामानुजाचार्य के पास लेके गए. तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि अनंताचार्य आपको इतने विषैले सांप ने काटा और आप सेवा नहीं छोड़ रहे थे, आपको आपके शरीर का ध्यान रखना चाहिए. तो उनका जो उत्तर है ये सुनिए, बहुत सुंदर उत्तर दिया अनंताचार्य. अनंताचार्य ने उत्तर दिया कि ये सांप ने जो मुझे काटा, ये सांप ने जो विष डाला मेरे शरीर में, मुझे तो उसकी चिंता हो रही थी सांप की, क्योंकि मेरे अहंकार का जो विष है वो इतना जहरीला है कि वो ऐसे सांप को भी मार दे. तो उनका क्वेश्चन रामाचार्य से क्या था, विच पॉइजन इज मोर डेडलियर, द पॉइजन विच दिस कोबरा गेव इन टू माई बॉडी और माई फॉल्स ईगो बिकॉज ऑफ विच द कोबरा माइट हैव डाइड. इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी. तो तीन गुणों के तीन स्तर बताए गए, गुणाधीन, गुणाधीश और गुणातीत. तो बद्ध जीव है गुणों के अधीन, इसलिए उसको क्या टाइटल दिया गया है, गुणाधीन. गुणातीत वो व्यक्ति है शुद्ध भक्त जो गुणों के परे जा रहा है. तो शुद्ध भक्त या हम सबको करना क्या है, हमको गुणातीत. और गुणाधीश कौन है, भगवान. महाभारत में बहुत सुंदर उदाहरण है. ये उदाहरण राधानाथ महाराज के प्रवचन से मुझे मिला. बहुत ही सुंदर एक महाराज का प्रवचन उन्होंने दिया था कुछ एक 10 साल पहले. तो वो महाभारत में कर्ण और अर्जुन का जो युद्ध जब प्रारंभ हुआ उन 18 दिनों में, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे महाराज. तो उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए महाराज, हम सब जानते हैं कर्ण और अर्जुन का जो युद्ध हुआ, यहां पर भी आप देख रहे हो कि कैसे कर्ण का पहिया अटक गया था, रथ का पहिया अटक गया था और उसे निकालने के लिए कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा था, तभी भगवान ने अर्जुन को कहा कि इसको अभी मारो, निहत्ता कर्ण, इसको अभी मारो। तो महाराज इसको डिस्क्राइब कर रहे थे अपने प्रवचन में और फिर महाराज ने लेसन दिया। इसका लेसन ये, महाराज ने कहा कर्ण रिप्रेजेंट्स फॉल्स ईगो। हाउ? बिकॉज कर्ण वॉज एक्चुअली ब्रदर ऑफ अर्जुन, ही वॉज वन ऑफ द पांडवस, कुंती पुत्र। कर्ण कौन है? कुंती पुत्र। सिमिलरली वी हैव अवर ट्रू ईगो विच इज लाइक अवर ब्रदर, बट कर्ण इन एसोसिएशन विद दुर्योधन बिकेम कंटेमिनेटेड। सिमिलरली अवर ट्रू ईगो इन एसोसिएशन विद द थ्री मोड्स विच इज लाइक दुर्योधन बिकम्स कंटेमिनेटेड एंड द रिजल्ट इज दैट देन वी स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट कृष्णा एंड अर्जुन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दुर्योधन। सो आगे उन्होंने बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया। सो अर्जुन वॉज नॉट विलिंग टू किल कर्ण लाइक दैट। कैसे? अरे ये तो निहत्ता है। तो महाराज बोल रहे थे कि क्यों अर्जुन हिचकिचा रहे थे मारने के लिए, क्योंकि अर्जुन के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि अरे मैं अर्जुन, मैं कर्ण को पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ मारना चाहता हूं, फिर मेरी ग्लोरी बढ़ेगी। और भगवान कहते थे नहीं, तुम्हारी ग्लोरी के पीछे मत जाओ, प्रैक्टिकली मुझे यह मरा हुआ चाहिए। डोंट रन आफ्टर योर ग्लोरी ऑफ किलिंग कर्ण विथ ऑल हिज वेपन्स इंटैक्ट, नो, किल हिम नाउ। तो अर्जुन को ठेस पहुंच रही थी कि नहीं, ऐसे कैसे मैं कर सकता। तो महाराज ने कहा द ओनली रीजन वाई अर्जुन कुड विन ओवर कर्ण वॉज बिकॉज ही टुक अ हम्बल पोजिशन एंड फॉलोड कृष्णा। तो महाराज ने ये कंपेरिजन किया, फॉल्स ईगो रिप्रेजेंटेड बाय कर्ण कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमिलिटी। तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि महाभारत के वॉरफेयर में जो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए गए वो क्या था? ऑपोजिट वेपनरी। ऑपोजिट वेपनरी मतलब इफ देर वॉज अ फायरी वेपन, कोई अग्नि अस्त्र है, तो फायरी वेपन वॉज काउंट्रैक्टेड बाय वॉटरी वेपन। इफ देर वॉज अ एरी वेपन, इट वॉज काउंट्रैक्टेड बाय माउंटेनस वेपन। इफ देर वॉज अ साउंड वेपन, इट वॉज काउंट्रैक्टेड बाय वैक्यूम। तो महाराज आगे बता रहे थे सिमिलरली लस्ट कैन बी काउंट्रैक्टेड बाय लव फॉर कृष्णा एंड फॉल्स ईगो और अहंकार कैन बी काउंट्रैक्टेड ओनली बाय ह्यूमिलिटी। और चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल है हाउ ही कॉन्कर्ड द फॉल्स प्राइड ऑफ दिस मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती, कि वाराणसी के ये ऐसे सन्यासी जो कि अपने आप को भगवान कहते थे और यहां चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, लेकिन उन्होंने उनका हृदय कैसे जीता कि जिस सभा में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था, चैतन्य महाप्रभु ऐसे जगह पर बैठे जहां पर वो अपने पैर धोते थे ये सन्यासी। तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु जैसे तेजस्वी सन्यासी को ऐसे स्थान पर बैठा हुआ देखा तो वो जाकर उनका हृदय थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा प्रकाशानंद सरस्वती का। सो विद दैट ह्यूमिलिटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु He conquered the falsely proud मायावादी सन्यासी। और फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है कि यदि किसी के अंदर जेन्युइन गुण हैं, तो वो उस वृक्ष के समान है जिसके अंदर ऐसे फल उगे हुए हैं जो कि उस वृक्ष को नीचे झुका रहे हैं। Only a tree which is laden with succulent fruits will bend। और जिसके अंदर कोई फ्रूट्स नहीं है वो हर समय खंबे जैसा खड़ा रहता है। तो जो अहंकारी व्यक्ति है जो हर समय खंबे जैसा खड़ा रहेगा जो झुकेगा नहीं वो व्यक्ति, उसके अंदर मानो कोई जूस ही नहीं है, जैसे कि फलों के अंदर जूस होता है ना। तो इससे मुझे अभी ध्यान में आया कि एक और चीज, इस एग्जाम्पल को अगर हम एक्सटेंड करें कि आप देखो, अभी आम का मौसम शुरू होने वाला है, आम का पेड़, कितने सारे आम एक पेड़ में आते हैं। बचपन में हमने भी ये सब किया है कि बच्चे आम के पेड़ पर पत्थर मारेंगे आम को गिराने के लिए, है ना, पत्थर मारते हैं ना। सो ओनली वन हु इज लेडन विद गुड क्वालिटीज, पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट हिम। और जिसके अंदर कोई फल नहीं, जूस नहीं, उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं मारता, खड़ा रहता है वो, उसको लगता है क्या, देखो कोई पत्थर नहीं मारा मुझे। तो पॉइंट ये है, इफ यू आर जेन्युइनली ट्राइंग टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, बी रेडी फॉर स्टोन्स। इफ पीपल आर थ्रोइंग स्टोन्स एट यू, नो दैट देर आर जेन्युइन फ्रूट्स ऑन योर ट्री। And if people are simply glorifying you, then know that you are a dry, fruitless tree standing upright. किसी को छांव भी नहीं दे सकता है वो। इसलिए अंतिम जो उदाहरण आज के हमारे प्रवचन का, that our qualities may be like the mango pulp, and that mango pulp is kept intact because of the skin outside. So no matter what qualities given by Krishna to us, if we do not have the protective skin of humility, that mango pulp inside will decay, decompose, dry up, die. So yadi jo bhi Bhagwan dwara di gayi qualities ya gun hamare andar kalaen, अगर उसके ऊपर हम नम्रता का छिलका नहीं लगाएंगे तो सब सड़ने वाला है अंदर। दैट इज वॉट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन, अर्जुन जस्ट फॉलो वॉट आई से, इन दैट ह्यूमिलिटी यू विल अचीव द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। अदरवाइज अ पर्सन इज सिंपली अ विमूड आत्मा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगले श्लोक में भगवान व्याख्या कर रहे हैं, गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की।